એઢવલા પુસ્તક નવવી લેક્ચર નંબર 15
ઓમ નમઃ સિદ્ધેય ઓમ નમઃ સિદ્ધેય ઓમ નમઃ સિદ્ધેય ઓમ શુદ્ધાત્મને નમો હરિયંતાનં નમો સિદ્ધાનં નમો આયરિયાનં નમો વજ્રાયાનં નમો લોયે સૌવસાઉરં અનુભાગભાગમેત્તો વિજ્જતદોષસ્સ સંભવો નસ્તિ સંપણમિયજિનનાહં સંકમમણુભાગગોયમ વોચમ.
યહ શ્રી વીરસેન આચાર્ય રચિત જેઢોલા ટીકા હૈ જો કષાય પાહુર તથા ચૂર્ણી સૂત્ર ગ્રંથો પર લિખી હુઈ હૈ જિનકે કરતા હૈ ગુણધર ભટ્ટારક તથા ઇતિ શુભ આચાર્ય જિન્હોને ભગવાન મહાવીર કે ઉપદેશ કે અનુસાર ઇન ગ્રંથો કી રચના કી હૈ. નવવી પુસ્તક જો બંધક નામ કા અર્થાધિકાર હૈ उसमें संक्रमण के प्रकरण में अभी हम उत्तर प्रकृतियों में पद निक्षेप की बात अभी चलेगी अपनी पृष्ठ संख्या 121 पद निक्षेप शुरू कर रहे अभी. ये तो अल्प बहुत था ना. हाँ बस
आसान था ना. सुगमम
सुगमम
आपके लिए इतना
यानी ये भुजगार आदि की बात चल रही थी. भुजगार अल्पतर अवस्थित और अवक्तव्य अभी उसमें पद निक्षेप बताएंगे. पद निक्षेप में मात्र उत्कृष्ट हानि है जगन्य हानि है जो कुछ है वो उसको बताएंगे. उत्कृष्ट वृद्धि जगन्य वृद्धि वगैरह. तो यहाँ हम देखते हैं पद निक्षेपेति तिन्नि अनियोग द्वाराणि. पद निक्षेप में तीन अनियोग द्वार होते हैं जघन्य और उत्कृष्ट वृद्धि हानि और अवस्था. हाँ ये नया अनियोग द्वार चालू हो जाता है यहाँ पर पद निक्षेप नाम का. ये अधिकार का नाम है और उसके अंदर तीन अनियोग द्वार हो गए. तो उसमें क्या बताएंगे जघन्य वृद्धि उत्कृष्ट वृद्धि जघन्य हानि उत्कृष्ट हानि जघन्य अवस्थान उत्कृष्ट अवस्थान. सबको मिलकर यहाँ क्या लिखा जघन्य उत्कृष्ट वृद्धि हानि और अवस्थान पदों का कथन करने वाला होने से पद निक्षेप इस संज्ञा को धारण करने वाला पद निक्षेप नामक जो अधिकार है यहाँ शुरू हो जा रहा है नवा नया उसकी इस समय अर्थ प्ररूपणा करते हैं. उसमें तीन अनियोग द्वार होते हैं. वे तीन अनियोग द्वार कौन है इस प्रकार की सूचना करने वाले आगे के पृच्छा वाक्य को कहते हैं. तम जहां यथा यानी वे इस प्रकार है ऐसा आगे कहेंगे बताएंगे. यह सूत्र सुगम है. परुवणा सामित्तम अप्पा बहुवम च प्ररूपणा स्वामित्व और अल्प बहुत्व. अल्प में बो दिख नहीं रहा वो दिख रहा है. इस प्रकार पद निक्षेप को विषय करने वाले ये तीन ही अनियोग द्वार है क्योंकि अन्य अनियोग द्वार वहां पर असंभव है. इनमें से सर्वप्रथम प्ररूपणा अनुगम को बतलाते हैं इस अभिप्राय से सूत्र कहते हैं. अन्यथा कैसे हमने देखा एक जीव की अपेक्षा काल अंतर क्षेत्र वगैरह. तो यहाँ तो कुछ नहीं उत्कृष्ट है जघन्य है वो किसके होती उतना ही बात बताएंगे. स्वामित्व और अल्प बहुत बताएंगे. अब आगे का सूत्र परूपणाए सवेशिन कम्माण मत्थी उत्कस्यावड्ढी हानि अवट्ठानम. प्ररूपणा की अपेक्षा सब कर्मों की उत्कृष्ट वृद्धि उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान है. अवक्तव्य के लिए सब कर्मों की होती है ऐसा नहीं कहा, और उसमें उत्कृष्ट जगह ने कुछ होता नहीं, अवक्तव्य तो अवक्तव्य होता है। जघन्या वड्डी हानि अवट्ठानम तथा सब कर्मों की जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान है, कि है इतना बताना यही होती है प्रारूपणा, ये उसके प्रारूपणाधिकार है। यानी पद निक्षेप में ये पहला प्रारूपणा वाला अधिकार है। हाँ, समुत्कीर्तना जैसे ये प्रारूपणा होती है, वो है इतना ही बताते हैं। ये दोनों सूत्र सुगम है। इस प्रकार सब कर्मों के विषय रूप से कहे गए जघन्य और उत्कृष्ट वृद्धि हानि और अवस्थान का सामान्य से सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के विषय में भी अति प्रसंग होने पर, यानी सभी प्रकृतियों में अगर कहते हैं तो इनको भी उसमें लेना पड़ेगा, तो ये तो दोष आएगा। इसलिए वहाँ पर अति प्रसंग होने पर वहाँ वृद्धि संक्रम के अभाव का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, क्योंकि उनमें वृद्धि नहीं होती, अनुभाग संक्रमण में वृद्धि नहीं होती, ना अनुभाग विभक्ति में वृद्धि होती, क्योंकि पहले कम है और बाद में बढ़ता है, ऐसा यहाँ बनता ही नहीं, स्थिति में बन सकता है, यहाँ नहीं बनेगा। इसलिए कहते हैं नवरी सम्मत सम्मम इच्छत्ताणम वड्ढी न थी, मात्र इतनी विशेषता है कि सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की वृद्धि नहीं होती। वृद्धि नहीं, यहाँ अनुभाग का प्रकरण है, अनुभाग वृद्धि नहीं होती, या संक्रमण अनुभाग का संक्रमण वृद्धि भी नहीं होगी, संक्रमण का प्रकरण है यहाँ पर, क्योंकि उन दोनों का अनुभाग वृद्धि के विरुद्ध स्वभाव वाला है। स्वभाव से उसमें कोई, क्योंकि शुरू से उसका उत्कृष्ट ही होता है, उसके बाद कोई वृद्धि का प्रसंग ही नहीं होगा। इसलिए सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान तथा उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान ही होते हैं, यह सिद्ध हुआ। हानि में वो जघन्य उत्कृष्ट हो सकता है, जघन्य हानि के बाद जो अवस्थान होगा उसको जघन्य अवस्थान कहेंगे, और उत्कृष्ट हानि के पश्चात जो अवस्थान होगा उसको हम उत्कृष्ट अवस्थान कहेंगे। इस प्रकार ओघ से प्ररूपणा समाप्त हुई। आदेश से सब मार्गणाओं में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है। अब स्वामित्व का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, यानी दूसरा अनुयोग द्वारा यहाँ पद निक्षेप संबंधी दूसरा अनुयोग। सामित्तम, अब स्वामित्व को कहते हैं। अधिकार की संभाल करने वाला यह वचन सुगम है। जघन्य और उत्कृष्ट पदों को विषय करने रूप भेद से वह स्वामित्व दो प्रकार का है। क्या कहना चाहते हैं? जघन्य हानि को बताने वाला, जघन्य वृद्धि को बताने वाला, वो अधिकार अलग, और उत्कृष्ट हानि वृद्धि को बताने वाला वो अलग। इसलिए स्वामित्व को भी दो प्रकार का कहेंगे। उनमें से उत्कृष्ट पद विषयक स्वामित्व का ही सर्वप्रथम निर्देश करते हुए आगे का सूत्र कहते हैं। अभी तक हमने यही बात देखी, पहले उत्कृष्ट को बताएंगे, बाद में जघन्य को बताएंगे, यानी सभी प्रकृतियों में उत्कृष्ट बताएंगे, फिर वो जघन्य की ओर जाएंगे। मिच्छत्तस्य उक्कस्य वड्ढीकस्य, यहाँ स्वामित्व बताते हैं, प्ररूपणा में तो होती है इतना ही बता दिया, अब किसके होती है? उत्कृष्ट अनुभाग वृद्धि, यानी अनुभाग संक्रम में उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है? उत्कृष्ट अनुभाग किसको होता है? वो नहीं, डिफरेंस समझ में आएगा। उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम किसको होता है वो बात अलग, उत्कृष्ट वृद्धि यानी पहले कम है और बाद में एकदम बढ़ गया, ऐसा किसको?
संक्रमण की अपेक्षा वृद्धि,
संक्रमण ही, वहां भी मैं संक्रमण की बात पर बता रही हूँ। उत्कृष्ट संक्रमण किसके हैं? तो जिसने उत्कृष्ट बंध किया है और उसके एकावली के बाद। परंतु उत्कृष्ट वृद्धि, वहां तो कोई कंडीशन नहीं थी कि पहले कितना था और बाद में कितना बढ़ गया, यहाँ मैक्सिमम पॉसिबल कितनी बढ़ोतरी हो गई संक्रमण में, यानी पहले मिनिमम था और उससे मैक्सिमम हुआ। तो ये पहले अनुभाग संक्रमण ने सत्ता में कितने स्पर्धक थे उसी का संक्रमण होगा, अब दूसरे समय में अधिक, बहुत अधिक बढ़ गया, तो कितनी वृद्धि हुई उसकी बात है,
मतलब वहाँ पर नन्या जी तो 100 भी चले गए, यहाँ 100 चलना चाहिए।
हाँ,
यहाँ पर 100।
आप यही कहना चाहते कि वहाँ 99 से 100 पर चला गया और ये मान लेते 5 से 4 से 3 से 100 पर चल गए, तो वृद्धि में बहुत बड़ी वृद्धि हुई ना, गैप बहुत ज़्यादा था, ये बात यहाँ बताएंगे। उसको उत्कृष्ट वृद्धि कहेंगे। अकेले उत्कृष्ट संक्रमण की बात पूछते हैं तो उत्कृष्ट बंद किया और एक अवली के बाद उत्कृष्ट संक्रमण हुआ, यहाँ वो बात नहीं है। उत्कृष्ट बंद तो कहेंगे, परंतु पहले सप्ताह में बहुत मिनिमम था, संक्रमण भी मिनिमम का चल रहा था, मतलब अधिक से अधिक वृद्धि कितनी होती है और कौन करता है, तो कितनी होती है वो तो वृद्धि के प्रकरण में बताएंगे। अब यहाँ तो स्वामित्व बता रहे कौन जीव है। तो पूछा था मिथ्यात्व की, मिथ्या करना, मिथ्या हुआ है, मिथ्यात्व की उत्कृष्ट वृद्धि का स्वामी कौन है, यह पृच्छा सूत्र सुगम है। अब उसका उत्तर बता रहे हैं। सन्निपाओग जहन्नयेन अनुभाग संकमेन अच्छिदो उक्कस्य संकिलेशं गदो तदो उक्कस्य अनुभागं पबद्धो तस् आवलियादिदस् उक्कस्या वड्डी। अभी प्राकृत थोड़ा थोड़ा समझ में आता है ना। देखो सन्निपाओग जहन्नयेन अनुभाग संकमेन अच्छिदो, यानी संगी के योग्य जगन्य अनुभाग संक्रमण लिया उसके साथ वो स्थित है। फिर उत्कृष्ट संकिलेशम गदो, उस जीव को उत्कृष्ट संकलेश परिणाम हुआ, तदो यानी तब उत्कृष्टम अनुभागम पबद्धो, उत्कृष्ट अनुभाग का उसने बंद किया। तस्य आवलिया दीदस, आवलिया अतीतस्य, यानी उसकी आवली जिसके बीत गई है
उसका उत्कृष्ट,
ऐसे उत्कृष्ट वृद्धि होती है। अब हिंदी में पढ़ेंगे। संगियों के योग्य जघन्य अनुभाग संक्रम के संक्रम हुआ, संक्रम के साथ स्थित हुआ जो जीव, यानी वो जघन्य अनुभाग संक्रमण कर रहा है, केवल जघन्य कहने से नहीं चलेगा, संगी के योग्य जघन्य, क्योंकि उत्कृष्ट बंद करने वाला ये संगी है, तो संगी के योग्य वो जघन्य अनुभाग संक्रमण कर रहा था, फिर जाके वो उत्कृष्ट तो संगियों के योग्य जघन्य अनुभाग संक्रम के साथ स्थित हुआ जो जीव उत्कृष्ट संकलेश को प्राप्त होकर उत्कृष्ट अनुभाग का बंध करता है, बंध से एक अवली के बाद वह उत्कृष्ट वृद्धि का स्वामी है। बंध करने पर भी आवली जब तक नहीं पूरी होती है तब तक वो पराना वाला जगन्य संक्रमण कर रहा है, आवली बीत गई तो उसी समय उसका उत्कृष्ट हो जाएगा, तो वृद्धि मैक्सिमम पॉसिबल वृद्धि यहाँ पर हुई।
लेकिन मैंने इस दिन देखा था कि जगन्य भी संयोग होता है, जैसे अनुभव की जगन्य संयोग भी होता है, मिथ्या तो
मिथ्यात्व का जगन्य एक सूक्ष्म एकेंद्रीय के होता है। संगी वाला जगन्य यानी अभी उसके योग्य जो जगन्य, क्योंकि उसका जगन्य जो कुछ सपना में वगैरह होता है वहाँ तो जगन्य होता ही नहीं उसका, परंतु वहाँ का जगन्य भी संगियों के जगन्य नहीं लेना, क्योंकि एक बार सपना शुरू की तो उल्टा तो नहीं आएगा उत्कृष्ट बंद करने को, तो ऑर्डिनरी स्टेज में जितना जगन्य हो सकता है उसकी बात।
तो ऑर्डिनरी तो सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त जीव भी मनुष्य और पीरियड में उत्पन्न हो सकता है।
हाँ, होगा
तो वहाँ पे यथा योग्य
बंद होगा क्या?
नहीं।
हाँ, तो जिस उस समय जितना उसका यथा योग्य है उसको ले लेना, ऐसा भी ले सकते हैं ना, पहले एकेंद्रियों में से आया है फिर संगी की योग्य उसने जगन्य बंध भी किया है और बाद में उसकी वृद्धि होगी, क्योंकि आते ही उसकी तो वृद्धि नहीं होगी, वहां से जो कुछ लेके आया है वो रहेगा कुछ काल तक।
नहीं, एक सागर से अंत कोड़ा कोड़ी का तो हो सकता है ना,
है ना। तो इसके संगी के योग्य जो जघन्य था अनुभाग संक्रमण कर रहा था और उसके बाद उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करने वाला, ऐसा लेना है। अंत कोड़ा कोड़ी आप स्थिति की अपेक्षा बता रहे हैं।
हाँ।
वो बात यहाँ नहीं लेनी, मैक्सिमम नहीं, उसका भी नहीं लेना है, क्योंकि उसके बाद उत्कृष्ट बंध कराना है। उतना ही लेना है ना संगी के योग, एकेंद्रिय में से आया हुआ के जीव की ये बात कर रहे हैं, परंतु आने के बाद उसका उतना संक्रमण चलेगा एकेंद्रिय में से जो स्थिति लेके आए हैं कुछ काल, तो उसका ये निकालो जघन्य का स्वामित्व, जघन्य अनुभाग संक्रमण कौन कर रहा था?
वो तो सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त को देखा था ना,
पंच मनुष्यों में पंचेंद्रियों में। वहां तो सूक्ष्म लब्धि में देखा हमने जघन्य, परंतु आदेश में भी वहां तो उन्होंने 38 पेज पर है, अनुभाग विभक्ति के समान जानो ऐसा ही लिखा है सर्वत्र। अनुभाग विभक्ति में स्वामित्व देखना पड़ेगा और वो भी मार्गणा में। पांचवी पुस्तक में
शुरुआत में
ये 180 के आगे पीछे, हाँ ये उत्कृष्ट है। यहाँ पर जगन्य की बात में
ये 17 नंबर पे बताया है, पंचेंद्रिय तिर्यंचों में मौनीय कर्म का जघन्य अनुभाग किसके हो?
161 आदेश में देखना हमको। वो तो सूक्ष्म जीवों में, वो तो ओग में हुआ, हमें आदेश में देखना है। हाँ वही मैं देख रही थी अभी 190 198। आप काल में चले गए, ये 180 में
161 में
उत्कृष्ट है, वहां पर 180 में
ओक से दे।
नारकी में बताया है 175 में, नरक गति में मिथ्यात्व का जघन्य किसके हत समुत्पत्ति के साथ, वहां तो उसकी विभक्ति ही बतानी थी, और यहाँ मनुष्यों में तो एकेंद्रिय में से आए हुए जीव लेंगे।
हाँ एकेंद्रिय में से यथा योग हत समुत्पत्ति करके आया है उसकी बात है ना,
उसी की बात है।
हाँ।
तो कुछ काल के लिए तो जघन्य रहेगा उसका।
हाँ।
क्योंकि उत्कृष्ट का बंध भी करेगा, फिर भी संक्रमण के लिए कुछ काल व्यतीत होगा ना उसका। वहां तो केवल उसकी विभक्ति तो हम आते ही उसको कहेंगे वो मनुष्य में आया है, और उसकी विभक्ति वैसी है। अब यहाँ हम जो पढ़ रहे थे कृष्ण अपने 123 पर चल रहा था ना। देखो ये तो मनुष्य में क्यों लगाना, हम नारकियों में भी लगा सकते हैं इसको। नारकियों में अगर लगाना है तो असंगी के योगी करके आया नारकियों में, परंतु मनुष्यों में
जघन्य होगा
वो, और जघन्य होगा क्योंकि वो तो
एकेंद्रिय
में से, और फिर उसके बाद उसने जो कुछ उत्कृष्ट किया नारकियों में असंगी से लाना, मनुष्यों में तो हाँ तो संगी उनसे योग्य, जघन्य में जघन्य वही होगा एकेंद्रिय से आया हुआ। देखो यहाँ पर सूत्र में जो संगीयम के योग्य जघन्य अनुवाक संक्रमण रूप विशेषण दिया है वह एकेन्द्रियादि जीवों के योग्य जघन्य अनुवाक संक्रम का निषेध करने के लिए दिया है। उसका निषेध किस लिए करते हैं? समाधान यहाँ देखना 123, क्योंकि उस प्रकार की अवस्था से युक्त परिणाम उत्कृष्ट अनुभाग बंध का विरोधी है। बात ख्याल में एक इंद्रिय के योग्य वहाँ कर भी रहा है शुरू में, परंतु उस
वो उसका उत्कृष्ट बंध
में उसका उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम
नहीं होगा,
इसलिए उसके योग्य ये शब्द उचित है। सूत्र में उत्कृष्ट संक्लेश को प्राप्त हुआ इस प्रकार के निर्देश द्वारा अनुत्कृष्ट संक्लेश रूप परिणाम का निषेध है। यानी शुरू में अनुत्कृष्ट करेगा तो वहाँ उत्कृष्ट वृद्धि नहीं होगी। शंका, उसके निषेध का क्या फल है? समाधान, क्योंकि उत्कृष्ट संक्लेश बिना उत्कृष्ट अनुभाग का बंध नहीं होता, इस बात का ज्ञान कराना इसका फल है। पुनः इसी बात के स्पष्ट करने के लिए उससे उत्कृष्ट अनुभाग का बंध किया यह वचन कहा है। तदो अर्थात उत्कृष्ट संक्लेश रूप परिणाम से उत्कृष्ट अनुभाग को अर्थात अंतिम अनुभाग बंध स्थान को बांधने के लिए प्रारंभ किया, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अंतिम अनुभाग बंध स्थान का अर्थ क्या है?
उत्कृष्ट के लिए
उत्कृष्ट अनुभाग का बंध, उत्कृष्ट अनुभाग का बंध मैक्सिमम पॉसिबल जितना बंध हो अनुभाग हो सकता है उतना उसने बांधा, उसी को बंध स्थान कहेंगे ना। अनुभाग का बंध स्थान ने बंधते समय अनुभाग में जो कोई अलग अलग स्थान हो गए, भेद हो गए, वेरिएशंस हो गए, उसमें से जो टॉप मोस्ट है उसको बताया उत्कृष्ट अनुभाग स्थान, क्योंकि हमने देखा था एक ही परिणाम से अनुभाग के स्थानों में भी वेरिएशन होती है।
आबादा खंडन,
आबादा का इसमें नहीं होता,
स्थिति
में होता, यहाँ वहाँ उसकी बात नहीं है। बार बार घोटाला होता है। उत्कृष्ट अनुभाग बंध के प्रथम समय में ही संक्रम के योग्य कर्म नहीं होता, क्योंकि हमने देखा था बंधावली के बाद ही संक्रमण होता है उसका, किंतु बंधावली के व्यतीत होने पर ही वह संक्रम के योग्य होता है। इस बात का कथन करने के लिए एक आवली व्यतीत होने के बाद उसकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है, उसके ने अनुभाग संक्रम की उत्कृष्ट वृद्धि होती है यह वचन कहा है। यहाँ पर वृद्धि का प्रमाण असंख्यात लोक प्रमाण 6 स्थान है। मैंने जो जघन्य अनुभाग बंध का संक्रमण करा था ना, जघन्य अनुभाग का संक्रमण करा था, वहां से वो उत्कृष्ट अनुभाग संक्रमण तक पहुंच गया, तो बीच में कितने स्थान लांग कर उसने ये कितने असंख्यात लोग बार
स्थान
इतने उसने छोड़कर उत्कृष्ट का बंध किया। हाँ, अनंत गुणा वृद्धि असंख्यात लोक बार होगी, एक बार नहीं, क्योंकि अनंतर अधस्तन समय के तत्प्रायोग्य जघन्य चतुस्थान अनुभाग संक्रम को उत्कृष्ट अनुभाग बंध में से घटा देने पर शेष बचे हुए अनुभाग में असंख्यात लोक प्रमाण 6 स्थान देखे जाते हैं। इस प्रकार हाँ देखो, पूर्व समय में जितना अनुभाग संक्रमण कर रहा था उसकी अपेक्षा अब जो अनुभाग संक्रमण कर रहा है उसके बीच में जितने स्थान हैं उनकी संख्या कितनी है या उसमें कौन कौन से स्थान हैं। तो एक बार 6 स्थान होता है तो क्या क्या होता है हमने देखे, उसमें कितने सारे असंख्यात असंख्यात स्थान होते हैं। यानी एक बार अनंत गुण वृद्धि होती तो एक 6 स्थान होगा, ऐसे 6 स्थान कितने होते हैं असंख्यात लोक प्रमाण बार। तो नीचे का जो अनुभाग संक्रम का स्थान था उसके अभी जो है उसको कहेंगे असंख्यात लोग बार षट्स्थान वृद्धि के स्थान बीच में चले गए, तब जाके उत्कृष्ट स्थान मिल गया। यानी डायरेक्ट उसने जगन्य से उत्कृष्ट पर बंद कर दिया।
यहाँ पे जो चतुस्थान बताया है जो जगन्य वाला, उसमें कुछ जो चतु पहले जो चतुस्थान बताया है और पीछे षट्स्थान पर वृद्धि,
ये षट्स्थान वृद्धि के बताया है।
हाँ, पहले जो चतुस्थान प्रमाण बंद कर रहा था और पीछे षट्स्थान गुणित वृद्धि,
अभी षट्स्थान बंद कर रहा है ऐसा नहीं लेना। देखो अनंतर अधस्तन समय के तत्प्रायोग्य जघन्य चतुस्थान अनुभाग संक्रम को, चतुस्थान यानी वो चतुस्थानिक वाला लेना।
हाँ। असंख्यात गुण नहीं
शैल अस्थि वगैरह वो,
अच्छा अच्छा वो लेना। हाँ।
अभी उसमें इतने हो गए ना शैल वाले ही है, इसको चतुस्थानिक कहेंगे। जघन्य उसमें जघन्य वाला लेना, जघन्य चतुस्थान से वो सर्वोत्कृष्ट हो गया। हाँ, जिस जघन्य से वो उत्कृष्ट तक पहुंचा है वो जघन्य भी चतुस्थान वाला था और उससे जो उत्कृष्ट में पहुंच गया है तो वहां बीच में कितने स्थान चले गए
उसके, असंख्यात लोग
एक समय में, एक समय में यानी पहले वाला जो अनुभाग वाला जो उसका परिणाम था वहां जो बंद किया था और उसका जो अनुभाग सत्ता में जो था उसका संक्रमण चल रहा था, ये अनुभाग इतना था। अब दूसरे समय जो बंद करके अनुभाग पहुंचा इस स्थान पर पहुंच गया, तो बीच में अलग अलग वेरिएशन कितने हुए अनुभाग संक्रमण के, बीच वाले स्थान कितने लांग कर वो चला गया है।
असंख्यात लोक प्रमाण,
असंख्यात लोक प्रमाण षट्स्थान वृद्धि जिसमें होती है ऐसे स्थान चले गए, वहां उत्कृष्ट पर पहुंच गया है। हाँ, एक ही समय में, तभी तो हम वृद्धि कहेंगे ना, थोड़ी थोड़ी देर करते गए तो हम एक समय में इतना ही बढ़ा कहेंगे, एक समय में इतना बढ़ गया है। हाँ, फिर उसकी उसने, हाँ यानी अनुभाग में उसने इतनी उत्कृष्ट वृद्धि की, पहले जो सत्ता में अनुभाग था और उसका संक्रमण चल रहा था उससे अभी कौन सा ये नया वाला अनुभाग बांधेगा एक ही समय में, और उसका संक्रमण भी आवली के बाद उतना होगा। यानी उसने इतना उसके परिणामों में, इसलिए पंचेंद्रिय के योग्य लिया वहां पर, एकेंद्रिय के योग्य में से वो इतने उत्कृष्ट नहीं बांधेगा। यहाँ पर वृद्धि का प्रमाण असंख्यात लोक प्रमाण छह स्थान है, क्योंकि अनंतर अधस्तन समय, अनंतर अधस्तन समय ने पूर्व का समय, तत्प्रायोग्य यानी उसके योग्य जघन्य चतुस्थान अनुभाग संक्रम को, हाँ यानी वहां पर जो अनुभाग संक्रम था उसको उत्कृष्ट में से घटा देंगे तो हमें डिफरेंस मिलेगा, वृद्धि का प्रमाण मिलेगा। पहले इतना था, अब अनुभाग संक्रम इतना हो गया तो इसको इसमें से घटा देंगे तो बीच वाले हमें वृद्धि का प्रकरण डिफरेंस मिलेगा हमको, तो वो डिफरेंस कितना है, तो असंख्यात लोग बार षट्स्थान वृद्धि हुए उसमें जितने स्थान चले जाएंगे उतने हैं वहां पर।
निश्चित होगा तो कोई भी टाइप बंद होगा तो वो चतुस्थानी होगा,
त्रिस्थानिक भी होता है, मिथ्यात्व में भी जघन्य होगा कि नहीं होगा, निकालो उस स्थान वाली बात, इसी में था ना कि पहले में चला गया था घाती संज्ञा असंज्ञ उत्तर प्रकृतियों में, 21-22 पर। यहाँ लिखा है देखो 21 पेज पर नीचे का सूत्र, और उसके बाद हम 65 नंबर का पॉइंट पढ़ेंगे। आपके पास है क्या 5 नंबर? नहीं नहीं, इसी में, इसी में, सॉरी, इसी में 21 नंबर पर देख रहे हैं। नवे पुस्तक नहीं, 21 नंबर पर देख रहे हैं। मैंने भूल से 5 नंबर बताया था। वहाँ कहते हैं सम्यत्व, चार संज्वलन और पुरुष वेद को छोड़कर, यानी अभी हम मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं, यानी मिथ्यात्व इसमें आ गया। 21 पेज निकाल इसी पुस्तक का, नीचे से चौथी लाइन में पढ़ रही हूँ, या पहले सूत्र पढ़ेंगे फिर वो चौथी लाइन पढ़ूंगी। सम्यक्त्व, चार संज्वलन और पुरुष वेद को छोड़कर शेष कर्मों का अनुभाग संक्रम नियम से सर्वघाती तथा द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक और चतुस्थानिक होता है। क्या कहा?
द्विस्थानिक,
द्विस्थानिक भी होगा, क्योंकि दारू का अनंत बहुभाग वाला जो मिथ्यात्व है
वो भी सर्वघाती,
द्विस्थानिक होगा, है तो सर्वघाती, एक स्थानिक उसमें नहीं होगा। मिथ्यात्व में या किसी सर्वघाती प्रकृति में एक स्थानिक होगा ही नहीं, द्विस्थानिक ही होगा। आगे भी लिखा है देखो 22 पृष्ठ पर, एक स्थानिक नहीं होता क्योंकि एक स्थानिक अनुभाग संक्रम का सर्वघाती होने का निषेध है। उसमें भी उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम चतुस्थानिक ही होता है। अब यहाँ जो बताया था चतुस्थान वाला, उसके योग्य जगन ने किया था चतुस्थान, और उसमें से वो, जिसमें से वो बढ़कर उत्कृष्ट हो सकता है, द्विस्थानिक में से एकदम उत्कृष्ट नहीं होगा,
नहीं होगा।
और द्विस्थानिक से उत्कृष्ट होता तो बीच में अनंत स्थान चले जाते, अनंत स्थान जाते, यहाँ असंख्यात लोक प्रमाण चतुस्थान गए हैं। ख्याल में आई ना बात? यदि द्विस्थानिक से चतुस्थानिक में पहुंचा देते तो बीच में अनंत स्थान चले जाते, क्योंकि स्पर्धकों के स्थान देखने, अनुभाग के स्थान तो अनंत होते हैं, एक एक शैल वाले में भी अनंत स्पर्धक होते हैं, इसमें भी अनंत स्थान हो गए अलग अलग, यहाँ तो बीच में तो
असंख्यात लोक प्रमाण ही लिया।
असंख्यात
तो ये जगत ये भी
तक प्रायोगिक शब्द क्यों डाला है कि जहाँ से जाके वो उत्कृष्ट बंद कर सके उतना लेना है। जब हम कहते कि जगन्य में से वो उत्कृष्ट तक चला गया तो बीच में कुछ वृद्धि करते 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 जाता है, उसको नहीं लेना। डायरेक्ट अगर वृद्धि किसमें ज्यादा होती है उसको लेते समय वो चतुस्थान वाला लिया था। समझ में आई बात? तत्प्रायोगी जो बताया था, आना फिर अपने पेज पर। देशघाती आप प्रकृति कह रहे कि स्पर्धक कह रहे, स्पर्धक भी उसमें हो गए ना वो, क्योंकि देशघाती प्रकृति में तो चतुस्थान भी होगा, देशघाती प्रकृति में तो सर्वघाती भी होते। अब जो देशघाती स्पर्धक है तो उसमें लता दारू का अनंत का भाग इतने ही है, उससे ज्यादा तो, हाँ बिल्कुल, उसमें एक स्थानिक हो सकता है, उसमें एक स्थानिक हो सकता है, परंतु उसका उत्कृष्ट भी है वो द्विस्थानिक ही है, उससे ज्यादा नहीं है। देखो हमने जो अभी वाक्य पढ़ा 123 पृष्ठ पर, नीचे से तीसरी लाइन, यहाँ पर वृद्धि का प्रमाण असंख्यात लोक प्रमाण छह स्थान है, क्योंकि अनंतर अधस्तन समय के तत्प्रायोग्य जघन्य चतुस्थान अनुभाग संक्रम को उत्कृष्ट अनुभाग बंध में से घटा देने पर शेष बचे हुए अनुभाग में असंख्यात लोक प्रमाण छह स्थान देखे जाते हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट वृद्धि के स्वामित्व का निर्णय करके, अब यहाँ पर उत्कृष्ट अवस्थान के भी स्वामित्व का विधान करने के लिए आगे के सूत्र का अवतार हुआ है। अब दूसरे समय में भी उतना ही किया उसने तो अवस्थान हुआ, बंदा उत्कृष्ट नहीं भी किया तो भी अभी जो बंदा है, तो जो बंदा है उसका अवली के बाद संक्रमण चलेगा, तो अंतर्मूर्त तक तो उत्कृष्ट होगा ही होगा, भले बंद बाद में कम बंदा तो भी एक समय के लिए भी उत्कृष्ट बंद करके फिर नेक्स्ट समय में अनुभाव बंद अन्य होगा तो भी जो उत्कृष्ट का अनुत्कृष्ट होने के लिए अंतर्मूर्त लगेगा संक्रमण, तब तक तो सत्ता में उतना उत्कृष्ट बना रहे। तो वही अनंत ऊपर देखेंगे, तस्य चैव से काले उक्त स्वयं अवस्थानम् तथा वही अनंतर समय में उत्कृष्ट अवस्थान का स्वामी है। पहले समय में जिसने उत्कृष्ट संक्रमण किया, वृद्धि करके जिसने उत्कृष्ट वृद्धि हुई है
वो अवस्थान,
दूसरे समय में उसका उत्कृष्ट अवस्थान होता। एक्चुअली अवस्थान तो उतने के उतने का नाम है, परंतु उत्कृष्ट करने के बाद उतना रहा तो उसको उत्कृष्ट अवस्थान नाम दे दिया। जो उत्कृष्ट वृद्धि का स्वामी है वही अनंतर समय में उत्कृष्ट अवस्थान का स्वामी जानना चाहिए, क्योंकि वहां पर उत्कृष्ट वृद्धि के प्रमाण से संक्रम का अवस्थान देखा जाता है, यानी उत्कृष्ट वृद्धि के पश्चात उतना ही उतना रहना उसको उत्कृष्ट अवस्थान कहते हैं, उतना ही रहेगा अवस्थान। परंतु दूसरे समय स्वामी कौन है उसका उत्कृष्ट का,
वही है जो उत्कृष्ट वृद्धि करता है,
वृद्धि हुई और अवस्थान हुआ अनंतर समय में, बाद में उतना का उतना रहेगा तो वो उसको वहाँ वृद्धि की वो तो अवस्थान उतना का उतना रहेगा, बाद में उसको उत्कृष्ट अवस्थान नहीं कहेंगे, उत्कृष्ट ही रहेगा फिर भी उसको उत्कृष्ट अवस्थान नहीं कहेंगे। वहां का अंतर्मूर्त तो उतना का उतना रहेगा एक अवली के बाद,
नहीं एक अवली में तो संक्रमण हो ही नहीं रहा है ना,
एक अवली में संक्रमण नहीं हो रहा है, एक अवली में तो पूर्व अवस्था का संक्रमण हो रहा था जो जघन्य था, उसके बाद उसने उत्कृष्ट वृद्धि की, अब वो जो बंदा था उत्कृष्ट उसका संक्रमण शुरू हुआ, वो तो वृद्धि हुई, उसके पश्चात नेक्स्ट समय में जितने अनुभव अवस्थान के लिए वो उत्कृष्ट अवस्थान एक समय के लिए कहेंगे, उतना का उतना रहा उसको उत्कृष्ट वृद्धि के पश्चात वाला अवस्थान नहीं कहेंगे, भले भले वो उत्कृष्ट ही है कितने काल तक रहेगा वो अंतर्मूर्त तक रहेगा। आपके प्रश्न का यहाँ उसका काल दिया नहीं ना यहाँ पर, जब उत्कृष्ट जब अवस्थान कहते हैं तो एक समय के
वृद्धि के पश्चात वाला समय
के पश्चात वाला जो है वही है, उसके बाद वो कंटिन्यूस रहा उससे कुछ मतलब नहीं होता, उसको उसका नहीं कहेंगे उत्कृष्ट कभी, उत्कृष्ट के बाद हुआ है और वो भले ना कितने टाइम तक चले।
यहाँ पे मेरा भी पहले घोटाला हो रहा था कि उत्कृष्ट अवस्थान पे उत्कृष्ट अवस्थान कितने काल तक होता है वो मैं पकड़ रहा था, पीछे आगे जब भी हमने देखा ना तो वृद्धि के पश्चात वाला एक
समय लेना। अवली तक नहीं अंतर्मूर्त तक, अवली के पश्चात तो शुरू हुआ, शुरू होने के पहले उसको नहीं कहते अवस्थान,
अवस्थान नहीं कहते, इसकी बात बराबर है, अवस्थान तो एक समय बात की
उस आवली काल में जघन्य संक्रमण हो रहा था, पहले वाला हो रहा था, उसमें बोलना बीच में आवाज लोगों का आवाज नहीं सुनाई दे।
देखो जो वृद्धि हुई उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट वृद्धि के बाद अगले समय में वो उत्कृष्ट अवस्थान हुआ, अभी वो जो उत्कृष्ट अवस्थान वाला जो कोई उत्कृष्ट वृद्धि है दोनों एक ही है ना, एक जैसे मतलब उत्कृष्ट रूप से, तो वो कितने एक अंतर्मुहूर्त तक उसका संक्रमण नहीं होगा,
संक्रमण नहीं होगा, नहीं संक्रमण होगा परंतु उतना का उतना होगा, अनुत्कृष्ट नहीं होगा,
एक आवली के बाद संक्रमण शुरू होता है ना।
हाँ, आप ये संक्रमण शुरू होना उसकी बात से की बात करते, फिर वहाँ अवली कहाँ डाली आपने?
हमने क्या देखा था? एक
देखो ये जघन्य अनुभव था, उसके बाद उसने उत्कृष्ट बंद किया, अभी सुनना, उत्कृष्ट बंद किया, ये बीच में आवली बज गई, बंद करने के बाद आवली बीत गई, तब उसने उत्कृष्ट संक्रमण किया।
हाँ।
तो ये जो आवली बीत गई तब तक कौन सा चल रहा था संक्रमण? ये वाला,
वो जो चल रहा था उसकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ,
अभी ये शुरू हुआ उत्कृष्ट। हाँ। संक्रमण शुरू। हाँ। हुआ
तो वो उत्कृष्ट संक्रमण शुरू होने के पहले जब उसने बंद किया था नीचे वाला पॉइंट,
ये बंद किया था।
हाँ, तो वहाँ से वहाँ तक
आवली ये, तक।
हाँ, उत्कृष्ट बंद का अवस्थान वैसे के वैसे रहेगा क्या? नहीं,
बंद का अवस्थान, बंद का अवस्थान पूछ रहे आप?
हाँ ना,
बंद उतना ही रहे इसकी कोई गारंटी नहीं।
उत्कृष्ट बंद जो हुआ
एक
है
समय के लिए भी किया उसने तो उसका उत्कृष्ट हो गया,
ठीक है।
दूसरे समय में उसने अनुत्कृष्ट बंद किया
उसकी बात नहीं है, वो जो बंदा हुआ है उत्कृष्ट रूप से उसका अवस्थान दूसरे समय में हम कहेंगे वैसे के वैसे।
बंद का अवस्थान नहीं कहेंगे, अनुभाग विभक्ति का अनुभाग।
अच्छा, अनुभाग विभक्ति का ले लो।
सत्ता में वो उत्कृष्ट रूप से पड़ा रहा।
हाँ।
वो पड़ा रहे कब तक? जब तक उसका अनुत्कृष्ट नहीं होगा। वो कब हो सकता है? एक अंतर्मूर्त के बाद हो सकता है।
तो एक अंतर्मूर्त तक अवस्थान रहा कि नहीं, ऐसा मेरा प्रश्न।
सत्ता वाला अनुभाग विभक्ति का रहा।
हाँ।
संक्रमण का नहीं कहेंगे।
अच्छा,
अब इसमें एक बार अनुभाग विभक्ति की बात पूछ रहे और एक बार बंद की।
बंद
एक समय में, एक समय के लिए भी उत्कृष्ट बंद हुआ।
मेरे बोलने में भूल होती होगी लेकिन मुझे क्या कहना है आप? हाँ, समझ गए हैं।
देखो अभी
तो जो उत्कृष्ट बंद हुआ जो कुछ है अनुभाग, वो कब तक वैसे के वैसे
एक अंतर्मूर्त तक रहेगा?
तो उसका वो अवस्थान हुआ कि नहीं, ये मेरा प्रश्न।
वो विभक्ति का हुआ, संक्रमण का नहीं हुआ।
हाँ ठीक है, विभक्ति का हुआ।
संक्रमण का कब कहेंगे? एक आवले के बाद।
एक आवली के
संक्रमण चालू हुआ तो उत्कृष्ट संक्रमण हुआ,
वृद्धि हुई,
वृद्धि हुई।
अभी हम एक बार वृद्धि की बात करें, एक बार संक्रमण की बात करें, एक बार विभक्ति की बात करें। पहले समझना, पहले जघन्य बंध था, उसके बाद उत्कृष्ट बंध किया। बंध करते समय ही उसके अनुभाग सत्ता में अनुभाग बढ़ गया, परंतु जो जघन्य संक्रमण चल रहा था
तो
वो उत्कृष्ट होने के लिए एक आवली काल तक रुकना पड़ेगा। उसके पहले संक्रमण नहीं होता है। अनुभाग सत्ता में तो बढ़ गया, अब ये सत्ता में बढ़ा हुआ अनुभाग है इतना मान लेते। दूसरे समय में उसने जघन्य भी बांध कहीं पर किया, उसके योगी जो कोई अनुत्कृष्ट बंध किया, फिर भी सत्ता में जो अनुभाग बढ़ा है वो इसकी उत्कृष्ट रूप से ही रहेगा, अनुभाग विभक्ति जिसको हम कहेंगे। तो उसमें से एक आवली के पश्चात
संक्रमण,
उसका संक्रमण शुरू हुआ। वो उत्कृष्ट संक्रमण अनुत्कृष्ट कब होगा?
अंतर्मूर्त के पश्चात।
एक अंतर्मूर्त तक तो इतना रहेगा ही रहेगा। अब उसमें भी ये छोटा या बड़ा अंतर्मूर्त है, उसने एक समय के ही लिए बंद किया है और बाद में उसने अनुत्कृष्ट बंद किया है, तो ये जघन्य अंतर्मूर्त तक रहेगा। और मान लेते उसने उतना ही उत्कृष्ट बंद लगातार एक अंतर्मूर्त में किया तो यह अंतर्मूर्त लंबे काल तक रहेगा, बड़ा अंतर्मूर्त तक रहेगा। ये तो संक्रमण की बात है। हाँ, इतना रहेगा ही अंतर्मूर्त, क्योंकि उत्कृष्ट बंद किया है उसने। वो
संक्रमण की बात,
अभी संक्रमण को जो उत्कृष्ट अवस्थान कहते हैं, उत्कृष्ट वृद्धि के बाद ये उत्कृष्ट अवस्था, तो उसको अवस्थित वाला भंग कहेंगे। यहाँ उत्कृष्ट अवस्थान जो पद में ले रहे हैं वो एक समय के लिए, और जो अवस्थित भुजगार अवस्थित वाली बात है, अवस्थित का उत्कृष्ट काल कितना है? तो अंतर्मूर्त है जो हमने देखा था, अभी देख लो। एक जीव की अपेक्षा काल देखना है भुजगार में अवस्थित का। एक जीव की अपेक्षा काल मिथ्यात्व का भुजगार 101 मुझे मिला है। संक्रमण का उत्कृष्ट काल जगन्य के लिए, अवस्थित का जगन्य काल एक समय है। हाँ, 105 पर क्या मिला आपको? किसकी कौन से प्रकृति का? मिथ्यात्व का तो 102 पेज पर है, वहाँ तो सम्यक कोई सम्यक दृष्टि रहा तो अवस्थित का अवस्थित रहा, परंतु हमें तो हाँ उत्कृष्ट ये भुजगार के बाद की बात है। हाँ स्वामित्व देखना,
ये तो उत्कृष्ट अवस्थान का काल देख रहे हैं ना।
हाँ देखो, अन्यथा जीव कोई भी होता है, मिथ्या दृष्टि या समय दृष्टि, और उसका काल कितना है अवस्थित वाला, वही तो बताए 163 शादी 163 सागर, वो मिथ्या तो के बारे में उत्कृष्ट जो उत्कृष्ट बंद के बाद वाला जो उत्कृष्ट अवस्था में स्पेसिफिक अवस्था नहीं है अपना। वहां तो देखो वहां क्या है, भुजगार ने अधिक किया, उत्कृष्ट किया ऐसा नहीं कि मैक्सिमम वृद्धि हुई ऐसा नहीं, थोड़ी भी वृद्धि हुई तो उसको हम कहेंगे वो भुजगार हुआ, उसके बाद वाला जो है वो अवस्था में जघन्य भी हुआ यानी कुछ कम हुआ, उसके बाद जो अवस्था है वो अवस्था में, वहां तो कोई स्पेसिफिकेशन नहीं था, भुजगार के बाद या अल्पतर के बाद जो अवस्था है उसको अवस्थान कहा। तो ये मिथ्या तो मैं 163 सागर लागू कर दिया कि उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। अब यहाँ हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, केवल भुजगार नहीं बात रहे, मैक्सिमम वृद्धि वाला भुजगार ले रहा है, जघन्य से मैक्सिमम तक पहुंच गया और फिर मैक्सिमम अवस्थान की बात कर रहे हैं, वो मैक्सिमम अवस्थान कितने काल तक रहेगा, तो उसको अवस्थान तो हम एक समय के लिए, परंतु उतना का उतना कितने काल तक रहेगा, तो अंतर्मुहूर्त तक रहेगा, एक अंतर्मुहूर्त, क्योंकि वृद्धि के पश्चात ये 163 सागर वाली बात नहीं बन सकती, ये तो मिथ्या दृष्टि की होगी ना, उत्कृष्ट वृद्धि किसको होगी,
मिथ्या दृष्टि
को होगी, तो वृद्धि हुई तो ये उत्कृष्ट पर नहीं कितने काल तक रहेगा, तो एक अंतर्मूर्त से ज्यादा रह ही नहीं सकता, वो भले बंद एक समय का हो या अंतर्मूर्त का हो, उत्कृष्ट बंद लगातार अंतर्मूर्त भी किया तो भी थोड़ा काल बढ़ेगा और क्या होगा, तो जो अवस्थान का लगातार का काल है वो अंतर्मूर्त तक चलेगा। अब फिर आते अपने पृष्ठ पर 124 पर, यहाँ लिखा ना तस्य चैव से काले उस्सयम अवठानम, तथा वही अनंतर समय में उत्कृष्ट अवस्थान का स्वामी है, अनंतर समय भी ले लिए ना वहां पर, क्योंकि वो उत्कृष्ट अवस्थान के बाद उत्कृष्ट वृद्धि के बाद वाला अवस्थान था, जो उत्कृष्ट वृद्धि का स्वामी है वही अनंतर समय में उत्कृष्ट अवस्थान का स्वामी जानना चाहिए, क्योंकि वहां पर उत्कृष्ट वृद्धि के प्रमाण से संक्रम का अवस्थान देखा जाता है, यानी कंपेयर किसको करेंगे, उत्कृष्ट वृद्धि के बाद होने वाला अवस्थान है, और तीसरे समय में उतना का उतना रहा ना, उसको केवल अवस्थित भंग कहेंगे हम। अब उत्कृष्ट हानि विषयक स्वामित्व का विचार करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, उत्कृष्ट वृद्धि किसकी है, जिसने तत् प्रायोग्य संगीत के योग्य जघन्य से लेकर एकदम उत्कृष्ट बंद किया, उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती है और उसके बाद उसका उत्कृष्ट अवस्थान है। अब उत्कृष्ट हानि की बात पूछ रहे हैं, उत्कृष्ट हानि कस, उत्कृष्ट हानि का स्वामी कौन है, यह पृच्छा सूत्र सुगम है। जस उपकस्यम अनुभाग संतकम्मम तेन उपकस्यम अनुभाग खंडयम आगाइदम तम्य खंडये घादी दे तस्स उपकस्य हानि, जिसके उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म है वह जब उत्कृष्ट अनुभाग कांडक को ग्रहण कर उस कांडक का घात करता है तब वह उत्कृष्ट हानि का स्वामी है। जिसके उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म विद्यमान है, विशुद्धि से परिणत हुए उसने सबसे उत्कृष्ट अनुभाग कांडक को ग्रहण किया, अनंत जब वह उस कांडक का घात करते हुए पूरी तरह से घात कर देता है तब उसके उत्कृष्ट हानि होती है। जब कांडक शुरू हुआ तो उतना का उतना अनुभव रहा, जब अंतिम फाली का भी घात हो गया तो उसके अनंतर समय में उसके उत्कृष्ट हानि हो गई, क्योंकि जितने स्पर्धकों का उन्होंने घात कर दिया उसके उतने कम हो गया, क्योंकि वहां पर अनुभाग सत्कर्म के असंख्यात लोक प्रमाण 6 स्थानों से युक्त अनंत भागों की हानि देखी जाती है। पहले हमने अनंत गुणा वृद्धि देखी थी ना, यहाँ पर अनंत भागों की हानि होने अनंत गुणा हानि जिसको हम कहेंगे। अब यह उत्कृष्ट हानि क्या उत्कृष्ट वृद्धि के बराबर है अथवा उससे न्यून या अधिक है, इस प्रकार इस तरह के संदेह को दूर करने के अभिप्राय से अल्प बहुत्व की सिद्धि करने के लिए कुछ अर्थ प्ररूपणा को करते हुए आगे की सूत्र परिपाटी का कथन करते हैं। हमने ये देखा कि उत्कृष्ट वृद्धि में भी असंख्यात लोक प्रमाण संस्थान बीच में चले जाते हैं और हानि में भी उतने ही बताए हैं, तो ये वृद्धि ज्यादा है कि हानि ज्यादा है, इसके लिए अल्प बहुत्व कहेंगे। उत्कृष्ट हानि से उत्कृष्ट हानि के अधिक है कम है, कम है तो कितनी है, अधिक है तो कितनी है, तो आगे का सूत्र बताते हैं। तब पावग जहन अनुभाग संकमादो उपकस्य संकिलेशम गंतुनम जम बंधदी सो बंधो बहुगो, तत् प्रायोग्य जघन्य अनुभाग संक्रम से उत्कृष्ट संकलेश को प्राप्त करके जिसका बंध करता है वह बंध बहुत है। ये ब करना वो दिख रहा है, शंकाकार पूछता है किससे इसका बहुत्व विवक्षित है, बहुत है कह रहे हो पर बहुत है कहने के लिए किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, किसके साथ इसकी तुलना हो रही है, उसका समाधान आगे कहे जाने वाले अनुभाग कांडक के आयाम से इसका बहुत्व विवक्षित है। उत्कृष्ट हानि में जो अनुभाग कांडक का आयाम कितना बड़ा कांडक है, उस कांडक से ये जो बंध में जो वृद्धि हो गई एक साथ वो बहुत ज्यादा है। का प्रश्न है ना, स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक एक ही समय प्रायोगिक लब्धि में जो है एक साथ होते शुरू में, परंतु अनुभाग कांडक का कार्य होता है वैसे, फिर भी शुरू आते ही प्रायोगिक लब्धि में आते ही उसका एक बड़ा अनुभाग कांडक और एक बड़ा स्थिति कांडक घात होता है, एक ही बार होता है वहां पर, एक ही बार होता है। कौन सा अनुभाग की सत्ता के अनुभाग का कांडक जघन्य वहां पर नहीं लिया ना, एक बार कांडक किया तो उसने जघन्य तो नहीं होगा, आगे अपूर्व करण में उसने बहुत बार कांडक किया तो जाके जघन्य होगा, अनिवृत्ति करण के अंतिम समय में उसका जो जघन्य होगा, प्रायोगिक लब्धि में एक ही बार अनुभाग कांडक घात होता है
वो तो स्थिति कांडक की बात है ना,
दोनों होते हैं
नहीं, वहां पे तो अनुभाग कांडक तो हजार होगी
नहीं, एक ही होता है प्रायोगिक लब्धि में, एक ही होता है प्रायोगिक लब्धि में, स्थिति कांडक भी एक होता है अनुभाग कांडक भी एक ही होता है।
अच्छा,
और जब अपूर्व करण शुरू होते हैं तो हर अंतर मुहूर्त में एक एक
अरे हजारों
अनुभाग हजारों हजारों हो गए।
अच्छा, प्रायोगिक लब्धि में एक ही,
हाँ वो प्रायोगिक लब्धि वाला नहीं होगा वहाँ, हाँ यानी उस वहाँ का जो अनुभाग कांडक है उससे भी कम वाले अनुभाग से बढ़ोतरी हो गई। हम पढ़ेंगे ना अभी, अभी तो उन्होंने कौन सा बड़ा है वो बता दिया।
हाँ।
तत्प्रायोगिक जघन्य से जो उत्कृष्ट बंध किया है वो ज्यादा है, देखो जमनुभाग हुआ जहन्नुभाग चाहिए, जहन्नानुभाग, जम के बदले जहन्ना, म के बदले हन्ना, हन्ना चाहिए, जहन्नानुभाग खंडयम जेन्नै तम विशेषहीनम, म के बदले ह जहन्ना जहन्ना हन्ना करना हन्ना हाँ जहन्नानुभाग तो जहन्नानुभाग खंडयम गेन्नई तम विशेषहीनम उससे जिस अनुभाग कांडक को ग्रहण करता है वह विशेषहीन है। ओ जम 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 चाहिए जहन्ना नहीं चाहिए जहन्ने की बात नहीं है जम की बात है। सॉरी जम यानी जो नहीं नहीं जिस अनुभाग कांडक जम अनुभाग खंडयम गेन्नई तम विशेष ही नहीं यानी जो उसने अनुभाग कांडक लिया है खंड लिया है कांडक यानी खंड वो कांडक का जो प्रमाण है जघन्य अनुभाग संक्रम से जो उत्कृष्ट बंध किया वो प्रमाण ज्यादा था। अभी हमने देखा था ना ये जघन्य था उसने उसे उत्कृष्ट बंध किया और दूसरा कौन सा जीव लिया ये उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम कर रहा था और इसने उतना इतना कांडक लिया और घात करके इतना ही कर दिया कांडक घात के बाद इतना कर दिया। यहाँ से जघन्य संक्रम से उत्कृष्ट बंध किया ये बड़ा है और उत्कृष्ट अनुभाग से एक कांडक किया उसने तो यहाँ तक आ गया तो ये छोटा है विशेषहीन है ये विशेषहीन है इतना कम है यानी जिस पोजीशन से उसने उत्कृष्ट किया था एक ही कांडक में वहां पर नहीं आ पहुंचता हो विशेष टॉप से यहाँ तक आ गया ये उसने कांडक किया पर ये जो वृद्धि हुई थी ना इससे ये कांडक का प्रमाण छोटा है उत्कृष्ट वृद्धि से उत्कृष्ट हानि कम है। तो कहते कितना हीन है या बताए ना उससे जिस अनुभाग कांडक को ग्रहण करता है वह विशेष हीन है जिस अनुभाग कांडक को यानी हमने जो उत्कृष्ट अनुभाग कांडक लिया था उसका कितना हीन है उसका अनंतवा भाग हीन है क्योंकि वृद्धि को प्राप्त अनुभाग का पूरी तरह से घात करने रूप शक्ति का होना असंभव है यानी उसका अनंतवा भाग इसमें कम है यानी ये पूरा घात करके इस जघन्य के पॉइंट पर नहीं पहुंच सकता थोड़ा अधिक ही रहता है। तो ये जो विशेषहीन का प्रमाण कितना है तो अनंतवा भाग एदम अप्पा बहुअस्त साहणम यह वक्षमाण अल्प भूत्व का साधक है। स्वामित्व में ही वो अल्पभूतों बता दिया है तो इसी से सिद्ध होता है तो अल्पभूतों को यहाँ से हम सिद्ध करते हैं यहाँ उत्कृष्ट वृद्धि भी बताई उत्कृष्ट हानि भी बताई उसका स्वामी भी बताया है परंतु ये प्रश्न उठ सकता था जितनी वृद्धि की क्या उतना ही वो हानि कर सकता है एक ही झटके में तो नहीं कर सकता तो वो थोड़ा कम है विशेष ही है ये अल्पभूतों को आगे सिद्ध करने वाला ये वाक्य है इसलिए उसको उसका साधक कहा। वक्षमान यानी जो कहने कहे जा रहे हैं वक्षमान हाँ कहने योग्य हम कहते हैं वक्षामि।
सर ये भी मिथ्या दृष्टि जी भी लेना है ना ये मिथ्या दृष्टि कोई होगा हाँ,
वही का होगा समय को में तो अवस्थित रहता है और इतना बड़ा कांडक भी नहीं वहाँ होगा कांडक भी होगा तो कहाँ पर होगा
अभी
क्षपणा में होगा हाँ। इतना बड़ा तो कांडक नहीं ना वहाँ तो इतना वहाँ उसका संकलेश से जो घटकर आया है उसके नहीं होगा अभी जो अक्षर पढ़ रहे में 600 है 463 वाला यह जो पहले उत्कृष्ट ब्रंध बुद्धि से उत्कृष्ट अनुभाग कांडक विशेष की कांडक विशेष क्यों कहा ये विशिष्ट अनुभाग कांडक लिया है हीनता कही है यानी जो उसमें डिफरेंस है वृद्धि और हानि में जो डिफरेंस है तो वह आगे कहे जाने वाले अल्प बहुत्व का साधक है आगे जाके अल्प बहुत्व कहेंगे अल्प बहुत्व हुआ है अल्प बहुत्व कहेंगे हाँ। अन्यथा उनका निर्णय नहीं हो सकता यह उक्त कथन का तात्पर्य है बाद में भी बता सकते हैं, परंतु यही उत्कृष्ट हानि और वृद्धि का प्रकरण हुआ है तो यही बता दिया, तो आगे चलकर वो अल्प बहुत में कह देंगे डायरेक्ट। एदम अप्पा बहुअस्य सहाणम, ये तो हो गया अल्प भूतव का साधन। एवं सोलह कषाय नव नौ कषायाणम, इसी प्रकार सोलह कषाय और नौ नौ कषायों की उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान का स्वामी जानना चाहिए। जिस प्रकार मिथ्यात्व के तीन उत्कृष्ट पदों के स्वामी का निर्णय किया, उसी प्रकार इन कर्मों के भी उक्त पदों के स्वामी का निर्णय करना चाहिए। कौन से तीन पद?
उत्कृष्ट वृद्धि,
हाँ उत्कृष्ट वृद्धि,
उत्कृष्ट
उत्कृष्ट हानि, उत्कृष्ट अवस्था, ये तीन पद, क्योंकि इनके स्वामित्व के निर्णय करने में अन्य कोई विशेषता नहीं है। वहां भी संगी प्राय संगी पंचेंद्रिय के योग्य जघन्य संक्रमण कर रहा था, उत्कृष्ट संकलेश परिणाम से उत्कृष्ट बंध किया और एक आवली के पश्चात उत्कृष्ट संक्रमण होगा, उसके उत्कृष्ट वृद्धि के पश्चात उत्कृष्ट अवस्था, और जब बड़ा कांड घात करता है उत्कृष्ट से तब उसका उत्कृष्ट हानि। सम्यक तो सम्यक मिथ्या तो में तो वृद्धि की बात ही नहीं है, पर होगी तो हानि ही होगी। सम्मत सम्मा मिच्छत्तानम उक्कस्या हानि कस्य, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट हानि का स्वामी कौन है? यहाँ तो हम यह नहीं कह सकते कि उद्वेलना करने वाला है, क्योंकि उसका थ्रूआउट तो उत्कृष्ट ही रहता है, तो उसका अनुत्कृष्ट कब हो जाता है? तो क्षपणा में हो जाता है,
पहले कर्म में।
तो वहाँ उत्कृष्ट हानि कब होगी उसकी बात पूछ रहे। दंशन मुनि खवयस विधि अनुभाग खंडय परम समय संकामयस तस्य उक्कस्या हानि, यानी पहला कांडघात हो चुका, जब तक पहला कांडघात चल रहा था तो उत्कृष्ट उत्कृष्ट अनुभाग संक्रमण ही चल रहा था, उसके अंतिम फाली खिरते ही नेक्स्ट समय में दूसरे कांडक के पहले समय में उसकी उत्कृष्ट हानि होगी, क्योंकि वहाँ मैक्सिमम अनुभाग में से घटेगा, अभी जितना है उसका कुछ भाग घटेगा, तो आगे आगे जो हाँ काल भी ज्यादा है और हानि भी ज्यादा है, आगे चलकर उसकी हानि
कम होती
चले, हानि तो होगी, हानि का प्रमाण घटेगा और छोटे छोटे काल में उसकी हानि होती चली जाएगी। यानी कि जो दर्शन मुनि की क्षपणा करने वाला जीव द्वितीय अनुभाग कांडक का प्रथम समय में संक्रमण कर रहा है वह उनकी उत्कृष्ट हानि का स्वामी है। दर्शन मुनि की क्षपणा में अपूर्वकरण परिणामों के द्वारा प्रथम अनुभाग कांडक का घात कर जो दूसरे अनुभाग कांडक में विद्यमान है, अर्थात जिसने दूसरे अनुभाग कांडक के घात का प्रारंभ किया है, वह उसके प्रथम समय में प्रकृत कर्मों की उत्कृष्ट हानि का स्वामी है, क्योंकि वहाँ पर सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व वो मिथ्वा हुआ है और त्य हुआ है, वह की जगह या चाहिए वह और त्य की जगह वह चाहिए, मिथ्यात्व क्या कहते हैं, वहां पर सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व के अनुभाग सत्कर्म के अनंत बहुभागों की एक बार में हानि होकर, अनंत बहुभाग उसमें घात हो गया उसका एक ही बार में, अनंतवे भाग प्रमाण अनुभाग में अवस्थान देखा जाता है, यानी अनंत बहुभाग प्रमाण अनुभाग की हानि हो गई सपना में पहले ही कांडक में, फिर आगे आगे कांडकों में और जो बचा है उसका अनंत भाग तो छोटा होगा। तस्य चैव से काले उक्कस्यम अवस्थानम, तथा वही जीव अनंतर समय में उनके उत्कृष्ट अवस्थान का स्वामी है। जो उत्कृष्ट हानि का स्वामी है उसी के अनंतर समय में उत्कृष्ट अवस्थान होता है, क्योंकि वृद्धि और हानि के बिना उतने में ही सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व के संक्रामकों का अवस्थान देखा जाता है। क्या कहते हैं? यदि उत्कृष्ट हानि या वृद्धि नहीं होगी तो क्या कहा? शुरू से जब से तैयार हुआ उत्कृष्ट 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 था, तो उतना का उतना में अवस्थान है उसका, बढ़कर अवस्थान कहाँ हुआ है? अकेला अवस्थित कितने काल तक है?
एक ही समय के
अवस्थित का लंबा काल कितना है?
अंतर्मुख, जब तक दूसरा कांडक घात पूरा नहीं होगा तब तक।
अनुत्कृष्ट की नहीं बात करें, कहीं पर भी मिथ्यात्व सम्यक्त्व और समय मिथ्यात्व का अवस्थित रहने का उत्कृष्ट काल कितना?
163 सागर, 163 सागर, सादिक 163
सागर। आप मिथ्यात्व की बात ले रहे हैं?
नहीं, 266 सागर,
266 सागर, और बीच बीच में पल्ले का आसन किया था,
तीन बार पल्ले का आसन किया था,
तो उसको उसको उत्कृष्ट अवस्थान नहीं कहा। यानी उत्कृष्ट में रहने का काल वो बात अलग है, उसको अवस्थित का उत्कृष्ट काल कहेंगे। यहाँ उत्कृष्ट अवस्थान का अर्थ है उत्कृष्ट वृद्धि या हानि के बाद जो अवस्थान रहता है एक ही समय के लिए, उसको उत्कृष्ट अवस्थान नाम है। देखो दूसरे समय में उतना का उतना रहा वृद्धि, अभी यहाँ तो हम हानि की बात करते हैं, हानि के पश्चात अनंतर समय में उतना ही रहा, तो हानि के बाद वाला अवस्थान है इसलिए उसको उत्कृष्ट अवस्थान कहेंगे दूसरे समय में। तीसरे समय में
उत्कृष्ट अवस्थान नहीं है, वो तो अवस्था नहीं रहेगा,
वो तो अवस्थान का अवस्थान, जितना अवस्थित था उतना ही अवस्थित रहा, उसको उत्कृष्ट अवस्थान नाम नहीं देंगे। आपका जो पहले प्रश्न था ना, तो एक ही समय के लिए उसको उत्कृष्ट अवस्थान कहेंगे, क्योंकि वो हानि उत्कृष्ट हानि के पश्चात हुआ है, इसलिए हम उसके काल बिल कुछ नहीं लिए। वृद्धि भी एक समय के लिए हुई, हानि भी एक समय में हुई, और जब लगातार उतनी की उतनी हानि थोड़ी होगी हर समय में, कांडक के पश्चात ही होगी।
यहाँ पे एक बात है, ये अपूर्वकरण में सभ्यत्व और सम्यक मिथ्यात्व का अनंत बहुभाग निकल जाता है, वही अपूर्वकरण में मिथ्यात्व भी सत्ता में तो है, पर मिथ्यात्व का इतना घात नहीं होता है अनुभाग का, और मिथ्यात्व का उत्कृष्ट घात उत्कृष्ट हानि हमने मिथ्या दृष्टि की देखी, तो उसकी हानि बहुत ज्यादा होगी, यहाँ पे अनंत बहुभाग निकल जाता है।
हाँ ना, अभी वो हानि होते होते यहाँ तक आए, इसकी तो पहले तक अभी हानि नहीं थी,
इसकी हानि हुई नहीं कहाँ पे,
ये पहली बार हानि हुई।
हाँ।
उसका भी जब पहला कांडक था तभी उसकी हानि देखी हमने, वहां भी मिथ्यात्व में भी उत्कृष्ट बंधके या संक्रमण के बाद वाली पहली उत्कृष्ट हानि देखी थी हमने।
हाँ।
जहाँ कहीं भी होती उसकी बात यहाँ नहीं ले रहे, यहाँ भी हमने पहला अनुभाग कांडक लिया है, वहां भी पहला एक अनुभाग कांडक लिया है बड़ा, तो ये हो गया अपना उत्कृष्ट हानि का स्वामी, उसी के अनंतर समय में उत्कृष्ट अवस्थान होता है, क्योंकि वृद्धि और हानि के बिना उतने में ही लिया, जितना अवस्थित है उतना ही रहेगा। यदि वृद्धि और हानि की बात नहीं करते हैं तो उतने में ही सम्यक और समय मिथ्यात्व के संक्रामकों का अवस्थान देखा जाता है। इस प्रकार ओघ प्ररूपणा समाप्त। अभी जगन्य का स्वामी लिया ही नहीं, जगन्य के पूरे अलग ही बात है, यहाँ उत्कृष्ट की बात हो रही है, उत्कृष्ट वृद्धि उत्कृष्ट हानि, सम्यक समय मिथ्यात्व में मात्र हानि ही होती है, वृद्धि होती ही नहीं है, इसलिए उसके उत्कृष्ट हानि ही बताई यहाँ पर, उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान। जघन्य हानि जघन्य अवस्थान वो आगे दूसरा प्रकरण, सभी प्रकृतियों का जघन्य वहां पर बताएं। अब यहाँ तो उत्कृष्ट की ओघ प्ररूपणा समाप्त हुई, आदेश से मनुष्य त्रिक में ओघ के समान भंग है, इसी प्रकार नारकियों में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि इनमें सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट हानि नहीं है, ये सम्यक सम्यक मिथ्यात्व को इंक्लूड करने के लिए मनुष्यों को ओघ के समान कहा, बाकी अन्य कर्मों में तो उत्कृष्ट संकलेश और वो सब वहाँ भी घटित होता है।
सो नारकियों में सम्यक्त्व की उत्कृष्ट हानि हो जानी हो सकती, नारकियों में सम्यक्त्व की उत्कृष्ट हानि हो सकती है,
सम्यक्त्व की उत्कृष्ट, क्योंकि प्रति समय अनुभाग का घटना होता है ना, तो नारकियों के लिए वो उत्कृष्ट कहलाएगा। मार्गणा का उत्कृष्ट वहाँ ले सकते हैं हम, सम्यक प्रकृति के साथ आया है चतुर्थ वेदक में, और एक एक पहले समय में अनुभव का इतना घटता हूँ, दूसरे समय में इतना घटता हूँ, उसको उत्कृष्ट घटना कहेंगे हम। तथा सम्यक्त्व का भंग अनुभाग विभक्ति के समान है। इसी प्रकार पहली पृथ्वी के नार की, इसीलिए उसको लिया ना पहला पृथ्वी वाला, सामान्य तिर्यंच वह भी कृतकृत्य वेदक की अपेक्षा ले लेना है। पंचेंद्रिय तिर्यंच द्विक लिखा है, त्रिक नहीं लिखा है, क्योंकि योनिमति में तो ये उत्पन्न नहीं हो गए। सामान्य देव और सौधर्म कल्प से लेकर सहस्रार कल्प तक के देवों में जानना चाहिए, ये सभी प्ररूपणा की अपेक्षा बात करते हैं।
ये कृतकृत्य तो सहस्त्र के ऊपर भी उत्पन्न होते हैं, तो वहाँ
कृतकृत्य होते हैं, परंतु संपूर्ण कथन वैसा होना चाहिए। कौन सा संपूर्ण कथन? मिथ्यात्व के बारे में भी,
के बारे
हाँ, उसकी वृद्धि भी कहना चाहिए ना। दूसरी पृथ्वी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक के नारकियों में इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व की उत्कृष्ट हानि नहीं है, वो तो लगातार उतना का उतना ही रहेगा। इसी प्रकार योनिनी तिर्यंच, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों में जानना चाहिए। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त और आनतादि चाहिए, अनतादि नहीं, आनतादि कल्प से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। यहाँ वो वृद्धि वाली बात नहीं होगी, इसलिए अनुभाग विभक्ति के समान बताए, इसलिए सहस्रार तक ही वहाँ वृद्धि हो सकती है, इसलिए उस अपेक्षा से बता दिया। विशेषार्थ, मनुष्य त्रिक को छोड़कर अन्यत्र दर्शन मुनि की क्षपना का प्रारंभ नहीं होता, इसलिए सामान्य नार की, प्रथम पृथ्वी के नार की, सामान्य तिर्यंच द्विक, एक्चुअली सामान्य तिर्यंच द्विक कहा, परंतु सामान्य तिर्यंच और पंचेंद्रिय तिर्यंच द्विक ऐसा लेना, सामान्य देव और सौधर्म कल्प से लेकर सहस्रार कल्प तक के देवों में सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट हानि का निषेध किया है। किंतु इन मार्गणाओं में कृतकृत्य वेदक वेदक हुआ सम्यक दृष्टि उत्पन्न होता है और उसके सम्यक्त्व की उत्कृष्ट हानि भी देखी जाती है, फिर भी वह ओह के समान संभव न होने से उसे अनुभाग विभक्ति के समान जानने की सूचना की है। यानी ओघ में जो हानि होगी उतनी नहीं होगी, मार्गणा के योग्य होगी। दूसरी पृथ्वी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक के नारकी, योनिनी तिर्यंच, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों में कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि नहीं उत्पन्न होता, इसलिए इनमें सम्यक मिथ्यात्व के समान सम्यक्त्व के जानने की सूचना की है। यानी सम्यक प्रकृति में भी हानि नहीं होगी उनकी, वहां सम्यक्त्व सम्यक्त्व करना सम्यक्त्य हुआ है। वहाँ सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व के सिवा अन्य सब प्रकृतियों का भंग ओह के समान है, यह स्पष्ट ही है, क्योंकि वहाँ पर भी उत्कृष्ट बंध भी हो सकता है, उत्कृष्ट वृद्धि भी होगी, हानि भी होगी, क्योंकि वहाँ भी सम्यक प्राप्ति की योग्यता तो है ही, यह स्पष्ट ही है। इसका अर्थ समझ में आया, वहाँ उत्कृष्ट हानि होती है, इसका तो वो सम्यक को प्राप्त करने के बाद वाली कोई हानि वहाँ तो लेनी नहीं है, और बाद में होती भी नहीं इतनी उत्कृष्ट हानि। अब रही पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त और आनत कल्प से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देव, ये मार्गणाएं। सो इनमें अनुभाग विभक्ति में जिस प्रकार स्वामित्व का निर्देश किया है, उसी प्रकार यहाँ स्वामित्व के प्राप्त होने में कोई बाधा नहीं आती।
तो वृद्धि है ही नहीं, आनंद से लेकर वृद्धि है ही नहीं।
हाँ, वहाँ तो वृद्धि नहीं है, इसलिए इनमें अनुभाग विभक्ति के समान स्वामित्व के जानने की सूचना है। और देख लो जरा, इसमें इन दो में ही देखना है ना, अनुभाग विभक्ति में पदनिक्षेप देखो डायरेक्ट देखो यहाँ स्वामित्व में 300 पेज के आगे 300-301 आदेश से तो उन्होंने बता दिया देखो आदेश से देख लेते हैं यहाँ भी चतुस्थान की बात आई थी देखो पहले से शुरू से देखते 300 पेज पर पांचवी पुस्तक 518 नंबर का स्वामित्व अनुगम उत्कृष्ट का बता रहे सेकंड लाइन में ओग से मिथ्यात्व 16 कषाय 9 कषाय की उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है मिला ना जो चतुस्थानी के ओम मध्य के ऊपर अंतर मुहूर्त तक अनंत गुणी वृद्धि से बढ़ा बाद में उत्कृष्ट संकलेश को प्राप्त होकर बात आई ना उत्कृष्ट वो तो यथा योग्य था उसके योग्य जघन्य था यथा योग्य फिर उत्कृष्ट संकलेश को प्राप्त होकर उत्कृष्ट अनुभाग का बंध किया उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती है उसके अनंतर समय में उत्कृष्ट अवस्थान होता है और उत्कृष्ट हानि किसके होती है उत्कृष्ट अनुभाग की सत्ता वाले जीव ने उत्कृष्ट अनुभाग का कांडक घात किया उसके उत्कृष्ट हानि होती है और सम्यक सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट हानि किसके होती है जो दर्शन मोह का क्षपक जीव है उसके द्वारा प्रथम अनुभाग कांडक का घात किए जाने पर उसके उत्कृष्ट हानि होती है अब देखो नीचे आदेश में नारकियों में बाकी तो मिथ्यात्व का वैसा ही है सम्यक्व की उत्कृष्ट हानि किसके होती है नारकियों में सम्यक्व की उत्कृष्ट हानि जो दर्शन मोह का क्षपक जीव सम्यक्व प्रकृति की अंतर्मूर्त प्रमाण स्थिति के रहते हुए नारकियों में उत्पन्न हुआ है
और दूसरे
मैक्सिमम निषेकों के साथ स्थिति के साथ आया है तो उसका वहाँ अनुभाग ज्यादा है दूसरे समय में वो ज्यादा घटेगा अब मान लेते हैं कि आवली और एक समय इतना ही लिया है उसने
तो
वहाँ जो हानि होगी वो उत्कृष्ट नहीं होगी तो द्वितीय समय होती उस नारकी के समय तो प्रकृति की उत्कृष्ट हानि होती है अब यही बात उन्होंने वहां आगे अब हमें जो पढ़ना था 520 में आगे के पेज पर पंचेन्द्रिय तीरें चपर्याप्त आपके पास है ना 5 नंबर पुस्तक उसमें 301 नंबर का पेज 520 नंबर का पॉइंट पंचेन्द्रिय तीरें चपर्याप्तकों में 26 प्रकृतियों की उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है जिसके अपने योग्य जघन्य अनुभाग की सत्ता है उसके अपने योग्य और यहाँ तो विभक्ति की बात है संक्रमण की नहीं फिर भी संक्रमण जैसा ही ऐसा उन्होंने कह दिया था अपने योग्य जघन्य अनुभाग की सत्ता है उसके अपने योग्य उत्कृष्ट अनुभाग का बंध करने पर उत्कृष्ट वृद्धि होती है जैसे एकेंद्रिय में से आया है तो उसकी जघन्य अनुभाग है सत्ता और वहाँ अपने योग्य उत्कृष्ट बांध लिया तो उसको वृद्धि होती है उत्कृष्ट हानि किसके होती है जिसके उत्कृष्ट अनुभाग की सत्ता है वह उत्कृष्ट अनुभाग कांडक को ग्रहण कर पुनः पंचेन्द्रिय तीरंच अपर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ यानी जो संगी पंचेन्द्रिय में था उत्कृष्ट अनुभाग था और उसने वहाँ कांडक ग्रहण किया था फिर भी मरकर यहाँ आ गया तो कांडक ग्रहण किया तो उसकी पूर्णता यहाँ पर होगी तो उसके उत्कृष्ट तो उसके द्वारा उत्कृष्ट अनुभाग कांडक का घात किए जाने पर उसके उत्कृष्ट हानि होती है आनस से बात करते हैं नीचे का पॉइंट आनस से लेकर नवग्रवेक तक के देवों में 26 प्रकृतियों की उत्कृष्ट हानि किसके होती है जो जीव प्रथम सम्यक्त्व के अभिमुख है उसके द्वारा प्रथम अनुभाग कांडक का घात किए जाने पर उसके उत्कृष्ट हानि होती है तथा उसी के अनंतर समय में उत्कृष्ट अवस्थान है। अनंतानुबंधी में उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है? इस संयोजना करने पर जो होती है, उसकी बात अभी नहीं आई अपनी। देखो अनुदिश से सर्वार्थ सिद्धि तक में क्या लिखा है, वहां अनुभाग कांडक घात कब होगा? वह तो सारे समय दृष्टि है, तो विसंयोजना के समय जो अनुभाग कांडक का घात होता है तब। अब आते अपने नौवीं पुस्तक, क्योंकि यहाँ लिखा था अनुभाग विभक्ति के समान है।
अनुदिश पे जो श्रेणी से उतर कर आया उसका नहीं होगा, जो श्रेणी के उतरे बिना जो अनुदिश में अनुत्तर में उत्तर उत्पन्न हुआ है।
आप जघन्य अनुभाग की बात कर रहे हैं स्वामी की?
नहीं, उत्कृष्ट हानि की बात कर रहा हूँ।
हाँ, तो
श्रेणी के उत्तर, श्रेणी उत्तर क्या होगा उसका तो अनुभाग बहुत कम हो गया है, तो उसको उत्कृष्ट हानि हो सकती है।
किस जीव की होती है उसकी बात नहीं है, वहाँ सारे समय दृष्टि है।
हाँ, तो समय दृष्टि में भी
तो श्रेणी से उत्तर में उतर के आया है
तो उसका अनुभव और कम हो गया।
तो शुरू से है उतना का उतना रहेगा, उसको हानि होने का सवाल ही नहीं है कोई, क्योंकि उसके अनंत अनुबंधी की सत्ता ही नहीं है। हानि कब होगी उसकी? उसकी हानि ही नहीं होगी। हानि किसके होगी?
अनंत अनुबंधी की सत्ता वाले को जब भी विश्व योद्धा करेगा तभी हानि हो सकेगी उत्कृष्ट।
हाँ, तो वेदक समय दृष्टि के होगी।
हाँ,
वो भी कौन सा, श्रेणी से उतर के आया और वहां जाके वेदक हुआ, वो भी नहीं चलेगा क्योंकि उसके सत्ता में अनंतानुबंधी है ही नहीं है। ख्याल में आती है बात?
हाँ,
श्रेणी से उतर के आया है और वहां उत्पन्न हुआ है
तो अनंतानुबंधी
की सत्ता कहाँ है? सत्ता ही नहीं है, तो उसके अन्य कोई कार्य होने का सवाल नहीं, उसकी तो हानि होगी नहीं, जितना है उतना रह के रहेगा। हाँ, उसका जघन्य हो सकता है वहां पर शुरू से।
हाँ,
उसकी बात नहीं यहाँ पर, हम हानि की बात कर रहे। हानि कौन करेगा? कि जहाँ कोई विशिष्ट कार्य करेगा विशुद्धि का, तो ऐसा कौन सा जीव है?
विसंयोजना।
वेदक समय दृष्टि वहां उत्पन्न हुआ है और उसने विसंयोजना की है, तो विसंयोजना के काल में जब कांडक घात करेगा तो पहला जब कांडक घात करेगा वो उत्कृष्ट होगा, बाद में करेगा तो कम कम हो जाए, यानी हानि कम हो जाएगी। हाँ, देखो इस प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ। अब जघन्य स्वामित्व का व्याख्यान हुआ है करने के लिए आगे के सूत्र संदर्भ को प्रकाश में लाते हैं। क्या क्या वाक्य रचना करते हैं? मिच्छतस्य जहन्या वड्डिकस्य। अब हमको उत्कृष्ट वृद्धि नहीं सोचना है, थोड़ी में थोड़ी मिनिमम पॉसिबल वृद्धि किसके होगी, यह सूत्र सुगम है। कृते सुहम एयंदिय कम्मेण जहन्येण जो अनंत भागेन वड्डिदो तस्य जहन्या वड्डि। जो जीव सूक्ष्म एकेंद्रिय संबंधी सगबंधी हुआ संबंधी जघन्य कर्म के साथ उसमें अनंत भाग वृद्धि करता है, वह जघन्य वृद्धि का स्वामी है। जघन्य कर्म है जघन्य सत्कर्म है अनुभाग सत्कर्म। हाँ, जो जीव सूक्ष्म एकेंद्रिय संबंधी जघन्य सत्कर्म के साथ, ये ऊपर भी सत्कर्म होना चाहिए था, यानी सत्ता में जो है, यानी जघन्य सत्कर्म किसको कहना, अनुभाग की अपेक्षा स्थित होता हुआ परिणामवश अनंत भाग वृद्धि को प्राप्त हुआ, अनंतवा भाग बढ़कर हुआ उसका, उसके प्रकृत जघन्य स्वामित्व होता है। इस प्रकार सूत्रार्थ का सद्भाव है। ये तो जघन्य वृद्धि हुई। अब जघन्य हानि कस्य, जघन्य हानि का स्वामी कौन है? यह सूत्र सुगम है। जो वड्ढाविदो तम्मी घादि दे तस्य जघन्या हानि। जगन अनंत वृद्धि रूप जो अनुभाग अनंत भाग चाहिए। जगन्य हानि चाहिए ना,
हाँ, अनंत भाग वृद्धि रूप,
अनंत भाग वृद्धि रूप अभी जो बढ़ाया था ना उसने,
हाँ, उसका कार, हाँ,
जो बढ़कर बांधा था उससे घटाया उसने, तो अनंत भाग वृद्धि रूप जो अनुभाग बढ़ाया गया उसका घात करने पर वह जघन्य हानि का स्वामी है। देखो क्या कहना चाहते हैं, पहले में पहले क्या किया उसने, जघन्य सत्कर्म के साथ था। एक मिनट में बताती हूँ, जघन्य बंद किया नहीं कहा था, जघन्य सत्कर्म के साथ था, ये उसकी जघन्य पॉसिबल जो है जघन्य सत्कर्म है, उसका बंद तो इतना भी हो सकता है, जघन्य बंद घात की अपेक्षा से जघन्य उससे भी जघन्य बंद करता है, परंतु उसका सत्कर्म कभी इससे नीचे नहीं चला जाएगा, परंतु ये बढ़कर कब बांधता है, यहां से बढ़कर बढ़कर बांधा बांधा बांधा, इससे जब बढ़कर बांधेगा तब उसकी वृद्धि होगी, क्योंकि उसके बंध तो नीचे तक चला जाता है, इसके समान भी बंध हुआ तो क्या हो, वृद्धि तो नहीं होगी, वृद्धि जघन्य सत्कर्म से ऊपर बंधेगा तो वृद्धि होगी। अब इस वृद्धि का घात करके फिर पोजीशन पर इस पर आ गया तो उसकी जघन्य हानि होगी, क्योंकि इससे नीचे हानि नहीं होगी उसकी।
तो यहाँ पर भी जघन्य वृद्धि से जघन्य हानि कम थे,
उतनी होगी ना, उतनी होगी, जितना बढ़ाकर बांधा है उतना ही घात किया उसने, उसने इतना कम बांधा तो भी उसका घात उतना नहीं होने वाला है, जितना बढ़कर बांधा है उतना ही, इसलिए ये कंडीशन डाली कि जितना बढ़ाकर बांधा है उतना ही उसने घात किया, उससे अधिक घात कर ही नहीं सकता, उससे अधिक बढ़कर बांध सकता है, परंतु हमें जघन्य वृद्धि चाहिए थी, तो जितनी जघन्य वृद्धि होगी उतनी हानि भी होगी। देखो हम यही रुकते हैं, इसको फिर पढ़ेंगे कल, ये जो सूत्र में पढ़ा ना अनंत भाग वृद्धि वाला, इसको फिर दोबारा पढ़ेंगे, यानी वो जघन्य हानि के स्वामी से ही ले लेंगे। जावाणी के ज्ञान तय तुझे लो पारो, सुवाणी मस्तक न सदा देत हो,